भक्ति आंदोलन एक नया परिप्रेक्ष्य। तीन, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन को प्रायः एक स्वर से उत्तर भारत की एक महान सांस्कृतिक घटना के रूप में स्वीकार किया गया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने उसे इस आधार पर लोक जागरण कहा है कि उसके पुरोधा तो लोक की चिंता से जुड़े ही थे, उसकी शक्ति और ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी लोक था, शास्त्र या वेद नहीं। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का महत्व इस कारण भी आंका गया है कि प्राचीन भक्तिवाद और पूर्व मध्यकाल में दक्षिण में उपजे भक्ति के प्रवाह की भांत मध्यकाल के उत्तर भारत के इस भक्ति जन्य उन्मेष में भी ब्राह्मणवाद और उससे जुड़े आचार्यों को भक्ति और उपासना के क्षेत्र में वर्ग वर्ण नस्ल लिंग धर्म और संप्रदाय का सारे भेदों को भुलाकर मनुष्य मात्र को भक्ति का समान अधिकारी मानने को विवश होना पड़ा। इसी का परिणाम है कि दक्षिण के आलवारों की तरह उत्तर भारत में नीची समझी जाने वाली जातियों के भीतर से संतों की एक शानदार परंपरा हमें मिली, जिसे ऊंची मानी जाने वाली जातियों ने भी स्वीकार किया। इसी तरह दक्षिण की भांत उत्तर भारत में पहली बार स्त्री संतों और भक्तों ने भी अपनी पहचान कायम की। इस भक्ति आंदोलन में पहली बार प्रस्थान त्रयी को हाशिए पर डालते हुए पहली बार संतों और भक्तों ने लोक मन में रची और पढ़ी भक्ति को अपनी रचनाओं में उभारा और अंकित किया। यही नहीं, देववाणी संस्कृत को पीछे छोड़ते हुए लोक की अपनी भाषा बोली बानी और उसके अपने छंदों में उन्होंने अपनी बानियां और अपने पद लिखे और कहे। भक्ति की यह स्रोतस्विनी उत्तर भारत में 300 वर्षों से भी अधिक समय तक प्रवाहित होती रही। पहले निर्गुण कही जाने वाली भक्ति के रूप में, तदुपरांत सगुण भक्ति के रूप में। इस समूचे दौर में भक्ति की इस विराट स्रोतस्विनी में अभिजन और जन सभी ने अवगाहन करते हुए अपनी आध्यात्मिक तृष्णा को शांत किया, अपने आतप तप्त मन को और प्राणों को सींचा तथा शीतल किया। उत्तर भारत में मध्यकाल के भक्ति के इस विराट प्रवाह को अब तक अनेक दृष्टियों और दृष्टिकोणों से विचार का विषय बनाया गया है। भक्ति के तत्व चिंतन तथा धर्म के गूढ़ रहस्यों में रुचि रखने वाले लोगों ने भक्ति के इस आंदोलन को अपनी रुचियों के अनुरूप व्याख्यायित किया है। किंतु ऐसे विचारक तथा विद्वान भी हैं जिन्होंने धर्म और भक्ति के इस विराट और उच्छल प्रवाह को धर्म और भक्ति की उसकी ऊपरी सतह पर परखने और पहचानने के बजाय उसके उन सामाजिक निहितार्थों को पढ़ने और समझने में अधिक दिलचस्पी दिखाई है, जिसके नाते उसे उसकी वह विशिष्ट क्रांत धर्मी पहचान मिली जिसका ऊपर जिक्र किया जा चुका है। इन सामाजिक निहितार्थों का महत्व तो इस कारण भी है कि धर्म और भक्ति के आवरण में वे इसे चले आ रहे समाज इतिहास के ऐसे गंभीर और महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रतिबिंबित करता हुआ पाते हैं, उसकी कुछ ऐसी सच्चाइयों का निर्देशक मानते हैं जिनकी आंच को सह पाना हर एक के बूते की बात नहीं है। उन लोगों के लिए तो कतई नहीं जिनके लिए धर्म और भक्ति तर्क के विषय नहीं, श्रद्धा और आस्था के विषय हैं। भक्ति आंदोलन संबंधी अपनी इस चर्चा को हम भी उसके धार्मिक या भक्ति पर पहलुओं की अपेक्षा उसके सामाजिक निहितार्थों पर ही केंद्रित करना चाहेंगे, ताकि 300 सालों से भी अधिक के उसके प्रवाह को इन सामाजिक निहितार्थों के आलोक में वस्तुनिष्ठ तरीके से जान और समझ सकें, इस तथ्य से अवगत हो सकें कि निर्गुण और सगुण भक्ति के रूप में सामने आने वाला भक्ति का यह प्रवाह अपने स्वरूप और चरित्र में वैसा समरस संश्लिष्ट और एक जैसा नहीं है जैसा वह ऊपर से दिखाई देता है, कि वह असंगतियों और अंतर विरोधों से भी ग्रस्त है और अपनी समग्रता में उतना क्रांतिकारी भी नहीं है जिसके लिए उसे समग्रता महिमा मंडित किया गया है। भक्ति आंदोलन के ये सामाजिक निहितार्थ ही है जो उसे न केवल विभाजित करते हैं, उसके उस क्रांतिकारी सार्थत्व पर प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं जिसके नाते अपने उन्मेष काल में उसकी विशिष्ट पहचान बनी थी। अतएव भक्ति आंदोलन की सामाजिक अंतर्वस्तु अथवा उसके सामाजिक निहितार्थों से टकराने का मतलब है भक्ति के आंदोलन को उसकी समूची वास्तविकता में जानना, उसके उदय उन्मेष और अवसान की वस्तुगत स्थितियों तथा कारणों से परिचित होना तथा उस समाज इतिहास से मुखातिब होना जिसके तमाम पन्ने बेहद रोमांचक क्रूर तथा अमानवीय वृत्तांतों से भरे पड़े हैं। यही नहीं, इस अध्ययन के बीच से ही हमें कुछ ऐसे सवालों के जवाब भी मिलेंगे जिन्हें लेकर हिंदी के प्रबुद्ध पाठकों और जिज्ञासुओं के मन में ही नहीं बहुतेरे विद्वानों के मन में भी लंबे समय से भ्रांतियां और अटकलों का एक सिलसिला चला आया है तथा निस्वार्थ से बराबर गाढ़ा करते रहे हैं। मसलन, क्या कारण है कि मध्यकाल के एक विशिष्ट दौर में समाज में निजी माने जाने वाली जातियों के बीच से संतों भक्तों की एक शानदार परंपरा सामने आई जो आगे के समयों में लंबे अंतराल तक फिर हमें नहीं दिखाई दी? क्या कारण है कि इन संतों भक्तों में अधिकांश शिल्पी या कामगार वर्गों से संबंधित हैं? संतई या भक्ति जिनका पेशा नहीं रहा किंतु जो संत भक्तों के रूप में ऊंची जातियों द्वारा भी स्वीकार किए गए और मान्य हुए। क्या कारण है कि 300 सालों से भी ज्यादा समय तक भक्ति की विराट स्रोतस्विनी में उत्तर भारत के अधिसंख्य जन समाज को सांस्कृतिक विरासत के रूप में किसी उच्चतर उपलब्धि के बजाय रीतिकाल का श्रृंगार और नायिका भेद मिला जो लगभग 200 सालों तक विराट हिंदी प्रदेश की प्रधान साहित्यिक अभिव्यक्ति बनकर प्रतिष्ठित रहा? सवाल और भी हैं जो इस चर्चा के क्रम में सामने आएंगे, जरूरत उनसे मुखातिब होने, उनसे टकराने और उनका हल पाने की कोशिश करने की है। भक्ति के उदय और विकास के ऐतिहासिक कारणों के इतिवृत्त में फिलहाल हम नहीं जाना चाहेंगे। संप्रत जो बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है वह यह कि मध्यकाल में उत्तर भारत में भक्ति का जो उन्मेष एक आंदोलन के रूप में हुआ उसके पीछे दक्षिण से उत्तर भारत की ओर आई भक्ति की लहरों का ही मुख्य योग है। पंडित रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा अवकाश मिला। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा सबल और विस्तृत होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं देश में बसने वाले सहित मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। वस्तुतः भक्तिवाद का प्राचीन रूप हो अथवा पूर्व मध्यकाल की दक्षिण की भक्त जिसके क्रमशः उत्तर की ओर संक्रमित होने की बात शुक्ल जी ने की है, या फिर मध्यकाल का उत्तर भारत में होने वाला भक्ति का उन्मेष जो हमारी चर्चा के केंद्रस्थ है, भक्ति के इन सारे प्रवाहों में मूलवर्ती प्रेरणा या उत्प्रेरक शक्ति लोक की साधारण जन की ही रही है। ये लोक मन में उठी भक्ति की उच्छल तरंगे ही थी जो विशद बनकर भक्ति के सारे प्रवाहों में सामने आई हैं। इस लोक में भी सबसे बड़ा हिस्सा उस जन का रहा है जिसे भारत की स्थापित सामाजिक संरचना में ब्राह्मणवादी वर्ण धर्म में शूद्र कहा गया है, फिर या फिर शूद्रों के चौथे वर्ण से इतर अंत्यजों स्वपचों चांडालों अधमों आदि के रूप में जो पंचम वर्ण में गिने गए हैं या जिन्हें वर्णों से बाहर किया गया है। हर प्रकार के सामाजिक मानवीय अधिकारों से वंचित ये साधारण जन सदियों से भक्ति या उपासना के एक ऐसे मार्ग के आकांक्षी थे जिस पर चलते हुए तमाम प्रकार के शास्त्रीय विधि निषेधों से अलग और उनकी जकड़बंदी के बावजूद वे बिना किसी मध्यस्थ के सीधे ईश्वर या प्रभु से अपना संबंध जोड़ सके। प्राचीन भक्तिवाद के तहत साधारण जनों की इस बलवती आकांक्षा का प्रमाण डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के पिछले कथन में हम पा चुके हैं। पूर्व मध्यकाल के दक्षिण भारतीय वैष्णव भक्ति के प्रवाह में भी लोक की सक्रियता और ऊर्जा ही निर्णायक रही है। दक्षिण में वैसे भी उत्तर के विपरीत समाज में वर्गों का एक ध्रुवीकरण सा रहा है जो ब्राह्मण और शूद्र प्रधानता इन दो वर्णों की प्रतिद्वंदिता को सामने लाता है। शूद्र वहाँ संख्या में ब्राह्मणों की तुलना में बहुत अधिक हैं। दक्षिण में आलवार भक्तों द्वारा प्रवर्तित वैष्णव भक्ति के जिस सोते की दक्षिण से क्रमशः उत्तर की ओर बढ़ने और उत्तर में एक विराट प्रवाह बन जाने की बात शुक्ल जी ने ऊपर दी है, भारत के इन सबसे प्राचीन वैष्णव आलवारों में जिसकी संख्या 11 है, उच्च वर्ण के भक्तों के साथ पिछड़ी जातियों और शूद्रों के अलावा एक स्त्री का होना और इन समस्त वैष्णवों का ऋषि रूप में पूजा जाना इस बात का प्रमाण है कि लोक की साधारण जन की विशद सक्रियता तथा भागीदारी दक्षिण भारत के इस भक्ति प्रवाह में रही होगी। जहाँ तक उत्तर भारत का प्रश्न है, सुल्तानों के काल में खास तौर से खिलजियों के समय से नए प्रशासकीय प्रावधानों के चलते उनके मातहत सामंत वर्गों की शक्ति तथा अधिकारों में कटौती होने के नाते तथा शासकीय तामझाम और सेना की जरूरतों के मद्देनजर आवश्यक उपकरणों की नई मांग के चलते समाज में कामगारों और शिल्पियों की आमद में इजाफा हुआ और न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी उनकी सामाजिक आकांक्षाओं में भी उभार आया। विद्वानों का मानना है कि भक्ति और उपासना के क्षेत्र में मनुष्य मात्र के बराबरी के जिस अधिकार की बात ब्राह्मणवाद के आचार्यों ने की है उसके मूल में भक्ति के हर दौर में उनकी यह चिंता ही प्रधान रही है कि इसके पहले लोक मन में उठा भक्ति का ज्वार शास्त्र और वेद सारे के सारे विधिनिषेधों को लांघते हुए वर्ण धर्म और उनके अपने वर्चस्व से बाहर हो जाए। जरूरी है कि कुछ रियायतें देकर लोक मन को शांत और संतुष्ट कर दिया जाए। भक्ति और उपासना के क्षेत्र में मनुष्य मात्र के समान अधिकार का उद्घोष ब्राह्मणवाद की इसी चिंता और सोच का परिणाम है। इतिहास साक्षी है कि इस प्रकार लोक मन के और उसमें उपजी भक्ति के उच्छल तरंगों को शांत और संयमित करके सुविचारित तरीके से लोक की ऊर्जा से संचालित भक्ति को पुराण और शास्त्र सम्मत बनाते हुए अवसर पाते ही धर्म तथा समाज सत्ता के प्रभुओं ने उसे अपने हितों के अनुरूप ढाल लिया, उस पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। प्राचीन भक्तिवाद का ही उदाहरण लें जिसे एक सुविचारित सुव्यवस्थित रूप भगवद गीता में मिलता है। गीता को महाभारत की युद्ध के समय युद्ध से परांगमुख अर्जुन को वासुदेव कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश के रूप में विज्ञापित किया जाता है। विद्वानों का विचार है कि इस ग्रंथ की उसके वर्तमान रूप में रचना और संपादन ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी अथवा और ईसवी सन की दूसरी शताब्दी के मध्य हुई होगी। भक्ति या भक्तिवाद की प्रतिष्ठा के अलावा इस ग्रंथ की रचना के मूल में धर्म और धर्मेतर बहुत से दीगर महत्वपूर्ण कारण भी हैं, जिनकी तफसील में फिलहाल हम नहीं जाना चाहेंगे। हम इससे जुड़ी जो बातें यहाँ रेखांकित करना चाहते हैं और जो हमारी चर्चा के लिए प्रासंगिक भी है वह यह है कि वर्ण धर्म और उस पर आधारित राजसत्ता के अपने वर्ग हितों के लिए उसके हिमायतियों को ऐसे किसी ग्रंथ की तदयुगीन स्थितियों में बेहद जरूरत थी जो उनकी और उनके द्वारा स्थापित सत्ता की रक्षा कर सके। भगवद गीता ने शासक वर्ग की इस जरूरत को भी पूरा किया। एक ऐसे ईश्वर में अटूट निष्ठा जिसकी बहुत कुछ संदिग्ध करतूतों को भी इसमें बाधक नहीं बनने दिया गया गीता की मुख्य विशेषता है। भक्ति की यह व्यवस्था सामंती विचारधारा के सर्वथा उपयुक्त थी क्योंकि सामंती समाज का वैचारिक आधार भी ऐसी ही निष्ठा या स्वामी भक्ति थी जो कृष्णदास को सामंत से और सामंत को राजा के साथ एक सुदृढ़ श्रृंखला से जोड़ती थी। फिर मातहतों की निष्ठा के वास्तविक मानवीय पात्रों का चरित्र कितना ही घृणास्पद व निकृष्ट क्यों न हो। यहाँ डॉक्टर डी डी कोश्राम्बी का मत अभिमत है। श्री के दामोदर तन एक अन्य कोण से उसकी वर्ग दृष्टि और वर्गाधार को विवृत करते हैं। उनके अनुसार ईश्वर को सभी कर्मों से परे माना गया है, वह कर्म में आसक्त नहीं है तो भी समाज के वर्ग विभाजन को पवित्र करने के लिए उसका आह्वान किया गया। चातुर्वर्ण अर्थात समाज के चार वर्ण श्री कृष्ण कहते हैं मैंने उनके गुणों और कर्मों के अनुसार बनाए हैं, अपने जन्म के अनुसार उसे जो कर्तव्य पूरे करने हैं उनसे मनुष्य को कभी बचने या भागने का प्रयास नहीं करना चाहिए, भले ही उसके इसके लिए हिंसा या अप्रिय कार्यों का मार्ग अपनाना पड़े। क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध करना है जबकि शूद्र का कर्तव्य ब्राह्मणों और क्षत्रियों की सेवा करना था। यही नहीं श्री दामोदरन आगे कहते हैं चातुर्वर्ण व्यवस्था वर्गहीन आदिम कबीलाई समाज से आगे बढ़ा हुआ कदम था और आदिम वर्गहीन समाज से वर्गों वाले समाज में रूपांतरण तथा वर्णाश्रम व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण को शक्तिशाली प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। इस नाते जरूरी था कि वर्णाश्रम व्यवस्था को ईश्वरीकृत बताकर इस प्रतिरोध का को समाप्त किया जा सके। कहने का तात्पर्य यह कि हर संभव तरीके से यह सुनिश्चित किया गया कि वर्ण धर्म बना रहे और शूद्रों तथा अंत्यजों आदि को भक्ति तथा उपासना संबंधी कुछ रियायतें देकर उन्हें संतुष्ट किया जा सके और अपनी सीमा में रखा जा सके। इसके अलावा यह भी कि वर्ण धर्म का विरोध करने वाली विचारधाराओं से निपटा जा सके। इतिहास गवाह है कि गुण कर्म के अनुसार निर्धारित वर्ण व्यवस्था आगे चलकर न केवल जन्म से निर्धारित होने लगी। सर्वधर्मात् परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज वाली एकांत समर्पण की शर्त वाली भक्ति निष्काम कर्म का उपदेश तथा स्वधर्म का पालन करने जैसे उसके विधान कालांतर में समाज तथा राजसत्ता के प्रभुओं द्वारा अपने वर्ग हितों का संरक्षण करने में इस्तेमाल किए गए। अन्यथा क्या कारण है कि उदार मना आचार्यों ने उपासना तथा भक्त के लिए भगवान का द्वार तो ब्राह्मण चांडाल सभी के लिए खोल दिया, किंतु सामाजिक स्तर पर मनुष्य और मनुष्य के बीच बरती जाने वाली भेद दृष्टि पर वे न केवल चुप रहे उसके उचित और उसे उचित और वैध भी ठहराया। आज शंकर की बात छोड़ भी दें तो भक्ति आंदोलन के अगुआ आचार्यों के भक्ति और उपासना के अलावा वर्ण भेद को बनाए रखने के क्या कारण हैं? समाज में दलितों तथा स्त्रियों के प्रति होने वाले अमानुषिक व्यवहार पर उनका मौन क्यों? ये आचार्य क्रांति दृष्टा भी माने जाते हैं। भक्ति के तरह समाज के स्तर पर भेदभावों का विरोध करने वाले किसी उपक्रम की अगुवाई उन्होंने क्यों नहीं की? इसके विपरीत वर्ण धर्म के महत्व तथा पवित्रता पर सभी आचार्य जोर देते रहे। रामानुज का नाम उदार मना आचार्यों में प्रमुखता के साथ लिया जाता है। उनके इस उदार मन की वास्तविकता को देखें। रामानुज ने समाज के प्रतिष्ठित वर्ग ब्राह्मणों को वेद अध्ययन तथा भक्ति के द्वारा मोक्ष का साधन बताया। शूद्रों के लिए प्रपत्य आत्मसमर्पण तथा आचार्याभिमान योग को मोक्ष का साधन बताया। उपनयन संस्कार के अभाव में उसके लिए वेद का अध्ययन संभव नहीं था। गुरु के समक्ष आत्मसमर्पण करने से उनके लिए मोक्ष प्राप्त करना संभव है। वर्ष में एक बार शूद्रों को मंदिर में ले जाकर उन्हें भगवत दर्शन का अवसर दिया। समाज सुधार के क्षेत्र में रूढ़िवादी होते हुए भी रामानुज क्रांतिकारी थे। रूढ़िवादी और क्रांतिकारी की इस विलक्षण संगत का ही एक अन्य साक्ष्य उनके द्वारा सवर्ण तथा शूद्र और अंत्यजों भक्तों के लिए भोजन तथा भजन हेतु किया गया यह विधान है कि सभी भक्त भोजन तो अलग अलग करेंगे किंतु भजन प्रार्थना एक साथ करेंगे। जैसा कि के दामोदरन का कहना है कि सुधारवादी रूख के बावजूद रामानुज की अपनी विचारगत सीमाएं थी। उन्होंने सामंतवाद की परिस के भीतर ही अपने सिद्धांतों का विकास किया। रामानंद इस सुधारवाद को कुछ प्रखर जरूर कर सके किंतु वर्ण धर्म की मर्यादाओं का प्रतिकार वे भी नहीं कर पाए। रामानंद के बारे में देश विदेश के विद्वानों में बहुत कुछ लिखा है। पंडित रामचंद्र शुक्ल की टिप्पणी उनसे कुछ भिन्न है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं, भक्ति मार्ग में इनकी उदारता का अभिप्राय कदाप नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं। ये रामानंद वर्ण आश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था अपनाते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया। कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा उन्हें मान्य थी, पर उपासना के क्षेत्र में वे किसी प्रकार के लौकिक प्रतिबंध नहीं मानते थे। अपनी तमाम सुधारवादिता के बावजूद भक्ति के आचार्यों ने चले आ रहे दार्शनिक विचारों और शास्त्र सम्मत सामाजिक विधान को ही आगे बढ़ाया। मोक्ष को परम पुरुषार्थ मानते हुए वर्ण धर्म के अनुरूप समाज को उसे पाने के अलग थलग रास्ते सुझाए। लोक से अधिक परलोक की चिंता पर जोर दिया। मनुष्य जो कुछ दुख सुख दुख समाज में भोगता है उसके स्रोत और उसके कारण इस समाज तथा व्यवस्था में ही हैं। इस सत्य को ठकते हुए कर्मफल और ईश्वरीय विधान कहकर उन्हें अदृश्य की मर्जी नियत के हवाले कर दिया गया। ईश्वर मनुष्य को दुख सहने की शक्ति भले दे, उसके दुख दूर नहीं कर सकता। इस सच्चाई पर भी पर्दा डालते हुए ईश्वर भक्ति को सारे सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने का माध्यम बताया गया। इस तरह जहां भक्ति और उपासना का द्वार बिना किसी भेदभाव के सबके लिए खोलकर यह व्यवस्था तो की गई कि सामाजिक भेदभाव से त्रस्त अपमानित आहत और यातना ग्रस्त जन राम का नाम लेते हुए भक्ति करते हुए अनंत काल तक व्यवस्था की अमानवीयता अन्याय और अत्याचारों को सहन करते रहे, परलोक सुधारने और मोक्ष की आशा में अपमान के घूंट पीते रहे, उस व्यवस्था के अपमान अमानवीयता और सामाजिक अन्याय के स्रोत को न केवल अक्षत रहने दिया गया, इसे मजबूत और गरिमामय भी बनाया गया। उपासना और भक्ति के क्षेत्र में मनुष्य मात्र की बराबरी, किंतु समाज के स्तर पर हर तरह की विषमता को बनाए रखने का विधान, यह भक्ति के आंदोलन का सबसे बड़ा विरोधाभास है जिसकी नोटिस ली जानी चाहिए। क्योंकि किसी भी युग में शासक वर्ग की विचारधारा ही उस युग की प्रधान विचारधारा बना करती है। यही कारण है कि यद्यपि नीची कही जाने वाली जातियों से आए संतों ने अपने जिए भोगे और अपने देखे सुने के साक्ष्य पर विद्यमान सामाजिक भेदभाव, रूढ़िवाद, पाखंड, स्वेच्छाचार आदि पर कठोर टिप्पणियां की हैं, उन्हें अमान्य किया है, उनके खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। प्रभु वर्गों की विचारधारा, उनकी विश्व दृष्टि और उनके विधि निषेधों में रची गई उनकी चेतना कुल मिलाकर एक विरोधाभास ही पैदा करती है। जाहिर है कि इस असंगत का लाभ भी व्यवस्था और शासक वर्ग के खाते में ही गया है, जिनके खिलाफ अपनी सारी ऊर्जा से ये संत उठे हैं।